نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم دم ذریعہ علاج اس میں سے ہم کر رہے ہیں نفسیاتی بیماریاں اور ان کا علاج ہم نے 17 یعنی 17 پوائنٹس دیکھے تھے کہ نفسیاتی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کرنے اور ایسی تکلیفوں سے بچانے کے ابھی ہم ڈائریکٹ 18 نمبر سے شروع کریں گے اس امید کے ساتھ کہ پچھلی 17 چیزوں نے ہمیں فائدہ دیا ہوگا اور اپنے اوپر لیں مجھے کوئی نفسیاتی بیماری ہے سستی ہے یہ بھی ایک نفسیاتی بیماری ہے تو آرام پسندی ہے اداس رہتی ہوں دل بجا بجا رہتا ہے یہ سب بیماری ہیں تو آپ ان چیزوں کا علاج اپنے اندر ان چیزوں کے راستے میں دیکھیں گے اب ہم دیکھیں گے 18 پیج نمبر 25 جب اس سے ناموافق صورت کا سامنا ہو تو وہ دنیاوی اور دینی اعتبار سے حاصل شدہ نعمتوں اور ان ناپسندیدہ حالات کا موازنہ کرے نوٹ کریں ذرا تکلیف آئی کسی کو نہیں اچھی لگتی تکلیف کوئی نہیں چاہتا ناموافق حالات آئیں اور ناموافق سمجھتے ہیں نا ایڈورس جس کو طبیعت پسند نہ کرے جس کو من نہ پسند کرے آ گئی اب کیا کریں اس وقت آپ کو اللہ نے دین کی اور دنیا کی جو نعمتیں دیے نا اس کو سامنے رکھ لیں تو یقیناً روزے روشن کی طرح واضح ہو جائے گا کہ جو نعمتیں موجود ہیں وہ بہت زیادہ ہیں ہم میں سے بہت سارے ہیں جن کو اپنے اوپر نعمتیں نظر نہیں آتی اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خود پہ رحم کھاتے ہیں جبکہ دور سے دیکھنے والے ان پہ رش کرتے ہیں یہ جملہ لکھیں ذرا یہ میں نے اپنے دل سے بولا ہے بک میں نہیں ملے گا آپ کو یقین کریں کہ اللہ نے ہمیں وہ نعمتیں دی ہوتی ہیں جس کو ہم نعمت جانتے بھی نہیں ہیں مانتے بھی نہیں ہیں کبھی کسی دوسرے سے پوچھ کے تو دیکھیے وہ کہے گا اگر وہ نعمت جو آپ کو ملی ہے نا وہ مجھے مل جائے نا تو میرے آدھے غم دور ہو جائیں گے اور پھر جو غم ہے میں ان سے بے نیاز ہو جاؤں گی لیکن انسان اتنا کوتاہ نظر ہے اتنی چھوٹی سوچ ہے انسان کی کہ اس کو اپنی قریب کی نعمت نہیں نظر آتی اور دوسرے کی دور پڑی نعمت نظر آتی ہے اور اس کا اپوزٹ بھی ہے اپنی قریب کی نعمت نہیں نظر آتی لیکن دور کا غم نظر آ جاتا ہے ہائے میرے بچوں کے بچوں کا اب کیا ہوگا بس غم پڑ گیا مشکل میں پڑ گئے حالانکہ آپ دیکھیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندگی کو اتنا بیلنسڈ اور اتنا پرسکون رکھا ہے کبھی آپ سوچیں کہ میں اور آپ جو کھاتے ہیں کیا وہ ہمارا حق تھا جو ہم پہنتے ہیں کیا وہ ہمارا حق تھا جن گھروں میں ہم رہتے ہیں کیا وہ ہمارا گھر تھا جس پرسکون ماحول میں ہم یہاں دین سیکھتے ہیں ہمارا حق تھا ہمارے تو گھروں میں بھی وہ نعمتیں نہیں ہوتی جو اللہ نے ہمیں مسجدوں میں اور مدرسوں میں دی ہوئی ہیں لیکن اس کے باوجود ہم خوش ہو کے ہی نہیں دیتے اسی لیے ہم دکھی رہتے ہیں ہم ہر وقت یہاں ہیں تو کہیں ہائے پاکستان چلے جائیں پاکستان ہوتے پاکستان ایسا ہائے کب جائیں گے پاکستان جاتے ہم کہتے ہیں ہائے کب واپس جائیں گے واپسی کے دن گن رہے ہیں ہائے اب ایک ایک دن مشکل ہو رہا ہے اچھا وہاں سے ادھر آئیں گے تو پھر کہیں گے موسم بدل گیا بچے بیمار ہو گئے ہائے یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہائے یہ ہو گیا وہ ہو گیا ذرا ایک 8-10-15 دن گزریں گے نا تو ہمیں دوبارہ وہ پاکستان کے غم یاد بھول جائیں گے اور وہاں کے آم یاد آئیں گے ہائے کتنے اچھے آم تھے جو ہم کھاتے تھے ہائے وہاں کتنی چلو اچھا تھا گرمی اپنے تو تھے نا یعنی انسان نے کبھی خوش نہیں رہنا اگر اس کو خوش رہنا نہیں آتا میں آپ کو اگر ابھی کہہ دوں نا کہ میں اگلا پوائنٹ نہیں پڑھتی پہلے آپ ذرا اپنی لسٹ تو بنائیں تو میرے لیے چھٹی تک آپ کی لسٹ نہیں پوری ہوگی جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں لیکن ہم شکر نہیں کرتے کیونکہ ہم غور نہیں کرتے اور دوسری شکر ہم کیوں نہیں کرتے بھلا نمبر ایک غور نہیں کرتے دوسرا بات ہے ہم نعمتوں کو اپنا حق سمجھتے ہیں تیسری بات ہے ہم اپنی اوقات نہیں پہچانتے چوتھی بات ہے کہ ہم مالک کی قدرتوں کا پورا احاطہ نہیں کر پاتے اسی طرح اگر کسی بات پر خوف زدہ ہو تو امن اور سکون والے حالات کا اس حالت سے موازنہ کرے تو اسے معلوم ہوگا کہ اس کی نسبت امن اور سکون بہت زیادہ ہے اسی طرح وہ غم اور خوف دور ہو جائیں گے آپ دیکھیے سورت اللہ نام کی ایک آیت یاد آ گئی ہے کتب علی نفسہ الرحمہ اگر آپ ڈیٹیل سننا چاہیں نا اس کی تفسیر میں نے سبیل الجنہ میں ایک بات کہی تھی وہ ابھی مجھے اچانک یاد آ گئی اور وہ کیا کہ ہم بیمار تو کبھی کبھی ہوتے ہیں صحت مند عموماً رہتے ہیں یہ ہے کتب علی نفسہ الرحمہ بھوکے تو کبھی سوئیں گے الا ماشاء اللہ پیٹ بھر کے روز سوتے ہیں کسی وقت سر میں درد شروع ہو جاتا ہے عام طور پہ ٹھیک ہوتے ہیں آپ دیکھیے اللہ کی رحمت आम तौर पे देखिए हम नॉर्मल होते हैं, बस वो नॉर्मल या बहुत नेमतों में जरा सा मसला आ देना, हम कहते हैं हाय हाय हाय, ये जो हाय हाय है ना, ये ना शुक्रिया है और खुद पसंदी है। तो याद रखिए कि ना मवाफिक हालात को खुशगवार बनाए। किसी की बहुत पहले की सुनी हुई ऐसी एक तारीफ थी किसी की भी, कोई आलिम नहीं थे लेकिन बस कह लें गौर व फिक्र वाले इंसान थे, तो कहते थे कि जिसकी ना ठीक भी ठीक लगे उसको खुदा कहते हैं। यानी अल्लाह के फैसलों पे बंदा इस तरह राजी हो जाए कि बुरा भी आ जाए, यानी रदी तो बिल्लाहि रब्बम व बिल इस्लाम दीन व बी मोहम्मद नबिया, यानी हर हाल में राजी, राजी ब रज़ाए रब, बिल कद्री खैर ही व शर ही मिन अल्लाह, खैर और शर अल्लाह की तरफ से। तो आप और मैं जरा सोचें तो सही। मैं कहती हूँ अब सीरत पढ़ने पढ़ाने के दौरान तो मुझे और भी इसका एहसास होना शुरू हो गया, थोड़ी नेमतें कम करें, थोड़ा सा अपने आप को हालात के धारे पे छोड़ के तो देखें। हर वक्त गाड़ी हमारे पास मौजूद होती है, ये नेमत है ना, चलना कितना पड़ता है, ट्रेन बस भी ले लेते हैं तो जितना वक्त हम बस में बैठते हैं और ट्रेन में बैठते हैं उससे तो बहुत कम चलते हैं ना, घर से स्टेशन तक, स्टेशन इधर से फिर स्टेशन से इधर तक, फिर भी हम खाए हाय करते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि शुक्रगुजारी जो है ना, ये वो चीज़ है जो बंदे को हर नफसियाती मर्ज से दूर कर देती है। आपने देखे होंगे अपनी ज़िंदगी में कुछ चेहरे ज़रूर ऐसे, आपके खानदानों में भी होंगे, आपकी दोस्तों और आपके करीबियों में भी होंगे, और वो क्या है जो हमेशा खुश रहते हैं, स्माइली फेस, मुस्कुराते चेहरे, अपने आप को ऐसे फील कराते हैं जैसे हमसे ज्यादा कोई खुश नहीं है। कल परसों मैं किसी के बारे में पढ़ रही थी, उन्होंने कहा कि एक शख्स है तो सारी जिंदगी उसने किसी को नहीं बात बताई और वसीयत की थी अपने घर वालों को या जिसके एक दो को पता था या डॉक्टर्स को कि मेरी जिंदगी के बाद बताना लोगों को, ये बात मेरी जिंदगी में ना बताना, ये कहना होती है ना, मैं क्यों अपने हालात किसी को बताऊं, लोग मेरे ऊपर क्यों रहम की नजर डालें। तो कहा क्या होता था कि वो जब सुबह उठता था ना तो पूरी रात सोने के जैसे उसकी ये पलकें चिपक जाती थी। तो सुबह में डॉक्टर्स उसको उसको कोई दिया हुआ था सोल्यूशन या टूल, अपनी पलकों को कोई दूसरा उसकी हेल्प करता, फिर दोनों को आपस से वो खेड़ता, फिर अलग करता और उसके अंदर कोई फ्लूड डाल देता, तो जिसकी वजह से दिन भर उसकी पलकें जमती। लेकिन जब वो रात को सोता था ना, जैसे आप देखिए काम करना कोई चीज छोड़ दे तो फिर उसकी वो बैटरी डाउन हो जाती है ना, तो उस रात पूरी सोने के जैसे उसकी पलकें बेसुध हो जाती थी और सारी जिंदगी वो इस मर्ज का शिकार है, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया। कहता था मुझे लोगों का तरस नहीं लेना, मुझे रहम नहीं लेना। और नेमतों को अगर हम कैश कराने लग जाएं तो यकीन करें हम ऐसे दुनिया में फिरें जैसे हम जन्नत में फिरते हैं। ये हमारे चेहरे पे बुखलाहट नहीं रह सकती, दुख परेशानी तकलीफें और स्ट्रेस और बहुत गुस्सा है, बहुत दिल पे बोझ है, बहुत परेशान हो रही हूँ और मैं बड़ी ऐसी हूँ, भाई क्यों, मुझे कोई हक नहीं है, क्योंकि अल्लाह की नेमतें बहुत है, खुश रहना सीखें। एक होता है किसी बात पे आपका मूड खराब हो जाए आप उसमें भी खुश हो, बीमार हो गए होगी बीमारी बट आप खुश रहें, नो प्रॉब्लम एट ऑल। याद है आपको पीछे इसी बुक के दौरान, नहीं सीरत के दौरान, हमने स्माइली फेस की बात की थी। मेरे पास एक किसी की ऑडियो सेव है, उन्होंने उसी दिन मुझे भेजा, उन्होंने ये लिखा हुआ था कि आज मैंने फर्स्ट टाइम इस बात पे गौर किया है कि मुश्किल हालात में भी स्माइल से क्या फायदा होता है। तो आप, मैं सिर्फ यही कहूंगी कि आई विल स्माइल स्माइल स्माइल, और आज मेरे हस्बैंड जब घर में आएंगे तो मेरा मूड बिगड़ा हुआ नहीं होगा, मैं स्माइल दूंगी उनको। तो मैंने नहीं कहा कि आपने खुश रहने का रास ले लिया, क्या हक है एक बंदे को गिले का। आप किसी भी एम्प्लॉय को देखें जो ये वर्कर होते हैं, हर वक्त ही शिकवे, हर वक्त ही रोना धोना, ये नहीं आज वो नहीं, किसी भी रूप में देखें। आप अपने बच्चों में से एक बच्चे को परख लें, हर वक्त शिकवे, आप ये नहीं देती, आप मुझसे प्यार नहीं करती, आपने मेरी बात नहीं मानी, आप कितने को दिन उस लाडले को बर्दाश्त करेंगी। आप कहेंगे अच्छा नहीं देती तो नहीं देती, नहीं अच्छी माँ, भाग जाओ बस, मुझे नहीं देना तुम्हें, तुम खुश ही नहीं कभी होगे। बीवी शौहर को हर वक्त ये कहती रहे, आप पूछते ही नहीं, आप करते ही नहीं, आपको ख्याल ही नहीं, आपको वो नहीं। मुलाजिम को मालिक या मालिक को मुलाजिम, दोनों में कोई एक दूसरे को कहे तुम्हें ठीक करने ही नहीं आता काम। सास बहू को कहती रहे तुम बेकार हो, तुम्हें सिखाया कुछ नहीं तुम्हारे माँ बाप ने, और बहू सास को कहती रहे मेरी माँ जैसा तो कोई था नहीं, आप तो है ही नहीं अच्छी। मुझे सच बताएं हम कितने दिन उस रिश्ते को निभाएंगे, उस ताल्लुक को तोड़ के फेंक देंगे। मैं पूरे यकीन से एक जुमला बोलने लगी हूँ, نہ شکری کی وجہ سے اللہ سے ہمارا تعلق ٹوٹ جاتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین کا جو تعلق ہے نا, یہ ہمارے پاس نہیں رہتا, ہمارے پاس نہیں رہتا. تو لہٰذا کہیں میری زندگی میں کوئی غم نہیں ہے, مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے, مجھے آج تک اللہ نے آزمائی کوئی نہیں, مجھے اللہ نے آج تک بیماری نہیں کیا, مجھے نہیں اللہ نے آج تک دکھ دیا, میں نے آج تک دکھ کا نام بھی نہیں سنا, میں نے آج تک بیماری چکھی بھی نہیں ہے, میں نے آج تک پریشانی دیکھی نہیں ہے. پھر دیکھیں ذرا آپ, یہ سارا سچ ہو جائے گا. بھول جایا کریں, رات گئی بات گئی, پچھلے دن کی باتوں کا اثر لے کے صبح اٹھیں گے تو ایک نیا جھگڑا تیار ہوگا. پچھلے غموں کو بھلا دیں, پھر دیکھیں خوش رہتے ہیں کہ نہیں رہتے ہیں. ایسے ہلکے پھلکے کندھے آپ کے ہو جائیں گے جیسے آپ 12 سال کی لڑکی ہیں. کوئی غم نہیں, کوئی فکر نہیں, میں نے کرنا کیا, میرا رب ہے نا, وہ کر لے گا خود ہی, اس کے ہاتھ میں اپنے کام دے کر تو دیکھے. وہ کہتے ہیں نا, پیسہ پھینک اور تماشا دیکھ, کر کے دیکھ لے, ہوتا ہے تو پھر ہونے دو, پھر کیا کروں میں, نہیں ہے تو نہ سے اٹسو کہ میں خوش ہوں. اللہ جی میں آپ سے خوش ہوں. اچھا کہتے ہیں بعض دفعہ منہ سے میں بڑی خوش ہوں, اللہ جو کر لے, پر جب کرتا ہے تو جیہ نکل جاتی ہے. وہ منہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں, شاید ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں اصل میں نا, یہ نہیں کہ ہماری کوئی سوچ بری ہوتی ہے یا ہم نفاق کا شکار ہوتے ہیں, عادت نہیں. اور مزے کی بات سناؤ کہ یہ عادت کلچرلی آتی ہے, کلچر, سوشل کلچر, یعنی ہمارا خاندان, ہماری ماں کی شروع سے یہ عادت تھی. ہم نے اپنی بھوپھیوں کو بھی ایسے ہی دیکھا, خالاؤں کو بھی دیکھا, شکوہ ہی کرتی کراتی رہ گئی. تو ہمارے اوپر ہمارا ماحول کا اثر ہے. اچھا آپ کسی بھی ملک کے لوگوں کو دیکھیں نا, تو کچھ کلچر ایسے ہیں جب حج پہ اللہ آپ کو لے جائے یا عمرے پہ, تو وہاں دیکھیں گے کچھ کے چہروں پہ کراہت ہے, فطری کراہت ہے, ایک پوری قوم ہی اسی مرض کا شکار ہے, اور کچھ کے چہرے اتنے فریش, اسمائلی, ریلیکس, کچھ دیکھ کے بہت فرینڈلی ہو جائیں گے. تو یہ کلچرلی بھی ہوتا ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے ملک میں یہ کلچر ہے کہ خوش نہیں رہنے دینا, کسی کو ہنستا دیکھ لے, وہ تو ہنس رہا ہے ادھر بم گر گیا, تو ہنس رہا ہے ادھر بچے اغوا ہو رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں یہ سارے میڈیا والے, یہ جھوٹ ہے کہ بچے اغوا ہو رہے ہیں اور یہ ہو رہا اور وہ ہو رہا, کچھ بھی نہیں ہو رہا, یہ صرف خوف دے رہے ہیں آپ کو, کیونکہ انہوں نے خوف ہی تو بیچنا ہے. یہ خوف دے کر ہی تو آپ لوگوں کو پھر اپنے آپ سے غافل کریں گے. تو یاد رکھیے ہمیشہ آپٹمسٹک رہیے, دنیا کی نعمتیں آخرت. جس وقت پریشانی لگے نا, کوئی بھی لگی, بس یہ کاپی پین پکڑے, لکھے میں لسٹ بنانے لگی ہوں نعمتوں کی, ورنہ آپ چاند پہ بھی پہنچ جائیں گے وہاں بھی خوش نہیں رہیں گے. آپ کہتے ہیں نا میں امریکہ پہنچ گئی تو بس میری تو باچھیں کھل جانی ہے, وہاں جا کے بھی رونا ہے آپ نے, اگر آپ یہاں رو رہے ہیں تو. لوگ بڑا پیسہ خرچ کر کے حج عمرے پہ جاتے ہیں, میں نے وہاں بھی دکھی دیکھا, وہاں بھی لڑتے ہی دیکھا میاں بیویوں کو, جو نہیں خوش رہیں گے وہ نہیں رہیں گے. تو ہمیشہ اللہ کی نعمتوں میں کہ اللہ جی آپ نے جو مجھے دی ہے وہ میرا حق نہیں تھا, میں ڈیزرو نہیں کرتی تھی, یہ ایکسٹرا دے رہے ہیں آپ مجھے, بس میرا حق اتنا ہی بنتا ہوگا کہ مجھے سانس آنے دیں, بس آپ نے مجھے پیدا کر دیا میں آپ کی بندی ہوں, لیکن سانس کے بعد جو نعمت مجھے آپ دے رہے ہیں نا یہ جسٹ ایکسٹرا ہے, یہ میری پے سے اوپر ہے, میری کوئی ڈیل نہیں تھی. پھر انشاءاللہ آپ کے سب مسئلے ختم ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد دیکھیے اس بات کو سمجھے کہ لوگوں کی اذیت بالخصوص بدگوئی اسے نہیں بلکہ خود انہیں کو تکلیف دیتی ہے, ایسی باتوں کی پرواہ نہ کرے اور نہ فکر کرے تاکہ اسے تکلیف نہ ہو. بات سمجھے, لوگ آپ کو اذیت دینا چاہتے ہیں بالخصوص بدگوئی, کوئی آپ کو برا کہتا ہے, مثلاً کسی نے آپ کو برا کہا, کسی نے آپ کی غیبت کی تھی, کسی نے آپ کو چل بڑی ایسی بنتی ہے, چل تیرا مجھے پتا ہے, چل اپنی باتیں اپنے پاس رکھ, مجھے پتا ہے جو تو بیٹے کو میرے خلاف بکاتی ہے, کچھ بھی کہہ لے ایسے الٹم پلٹم. اور یقین کریں میں پھر شعور سے ہی کہوں گی, ہم اکثر اوقات دوسروں کی باتوں کی وجہ سے دکھی ہوتے ہیں, ایسے ہی درد پا لیتے اگلے کے, فرشتے کو بھی خبر نہیں ہوتی, نہیں آپ نے مجھے یہ کیوں کہا, بھائی میں نے کب کہا, اچھا بھائی مجھے تو نہیں یاد, تو میں تو صبح سے اس بات میں کٹ رہی ہوں, جل رہی ہوں, بھن رہی ہوں. آپ کہیں کہ جو دوسرے کو تکلیف دیتا ہے اس کو کیا ہوگا. میں ایک سلائڈ کسی نے ایک بھیجی تھی, اس کا مجھے جو مفہوم یاد آ رہا ہے کہ جو آج بے سکون ہے نا اس کو زندگی میں کبھی بھی سکون مل جائے گا, لیکن دوسرے کو بے سکون کرنے والے کو زندگی میں کبھی سکون نہیں ملتا. یہ خلاصہ ہے جو بات تھی. قیامت کے دن حضرت علی کہتے ہیں کہ میں اس حال میں آؤں कि मैं मजलूम हूँ तो ये मुझे गवारा है, लेकिन मैं ये नहीं बर्दाश्त कर सकता कि मैं जालिम बन कर आऊं। आप ये डेफिनेशंस तो जरा आम करें, फिर देखिए क्या होता है। और कल ही मैंने एक बड़ी खूबसूरत बात पढ़ी, बल्कि मैंने सेव भी किया है कि उसको किसी स्मॉल सेशंस में शेयर करूंगी। मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। मुझे नहीं पता किसका, लेकिन हजरत अली के नाम से ये कॉल था किसी का। बात अच्छी समझ के मैं तो बस शेयर करूंगी, मुझे इससे कोई नहीं लगेगा किसकी है, क्योंकि हकीकत है कि अच्छी बातों की आज वो बहुत ज़रूरत है। बहुत सारे लोग आज अपनी ज़िंदगी में सिर्फ इसलिए परेशान हैं कि वो बेकार बातें सुनते, बेकार बातें पढ़ते और बेकार खबरों पे तबसरे करते हैं। ये आज हमारे मीडिया से ज़्यादा वक्त क्या नशर होता रहता है, बेकारियात। उसके खिलाफ उसने ये कर दिया, आग लग गई, ये हो गया, वो हो गया। तो ये कॉल है किसी का कि मेरी चुप को मेरी हार मत समझना, मैं अपने फैसले खुदा पर छोड़ देता हूँ। यानी मैंने बोल के क्या करना है, मेरा फैसला अल्लाह करेगा। समझ आई ये बात? तो मत बोले आके से कोई आपको जितनी भी बात करे। मेरे साथ चूंकि अक्सर ही डिस्कशंस रहते हैं, हम खुशी से इस बात में आते हैं, मियाँ बीवी के झगड़े और घर वाले और ससुराल वाले अक्सर होता है। अच्छा, लड़कियों लोग की बात सुने ना लगेगा उनकी बच्ची से ज्यादा पाक साफ कोई फत माँ बच्ची नहीं होगी, और उनको जो मिल गया अल्लाह उस बंदे पे रहम कर दे, उसने मेरी बच्ची पे जुल्म कर दिया। आप लड़के लोग की बात सुन ले तो वो कहेंगे इससे ज्यादा हमारे बच्चे की बात नसीबी नहीं थी जो उसको ये मिल गई है। वल्लाही मैं आपको सच कहूंगी, मैं एग्जेजरेट बिल्कुल नहीं कर रही इस वक्त, क्योंकि जब जब क्लेश होती है ना फिर नजर खराब हो जाती, फिर एक खूबी भी नहीं अगले की नजर आती, और छोटी छोटी खामियां जो अंदर कभी पैदा होनी थी या माजी में थी ना वो भी खुल के दिखती हैं। रिश्ते होते वक्त हमें सब खामियां छुप जाती हैं हमसे, और रिश्ते टूटते हैं तो हर खूबियां पीछे चली जाती खामियां। तो मैं एक जुमला अक्सर लोगों को कहती हूँ, अल्लाह ना करे आपका कभी वास्ता किसी से पड़े, तो दोनों साबित कर रहे हैं ना, उसका कसूर उसका कसूर, ये खराब वो खराब। तो जब बात नहीं समझ आती ना कि नहीं बननी, तो मैं उनको कहती हूँ देखें ये जो बात आप कह रहे हैं ना इसके वक्त के लिए बस साल 2 साल इंतजार कर रहे हैं, आने वाला वक्त बताएगा कि इसमें से गलती किसकी थी, कसूर किसका था। आपकी बेटी के साथ अब इस रिश्ते के बाद क्या होना है और आपके बेटे के साथ इस रिश्ते के बाद क्या होना है, ये आने वाला वक्त, अल्लाह बहुत बड़ा जज है, अल हाकिम अल हकम हकीम फैसले करता है, वो दूध का दूध पानी का पानी कर देगा। आप ना अपनी बेटी की खूबियां बयान करें, अगर आपकी बेटी अच्छी है देखिएगा इंशाल्लाह इस लड़के से कई गुना अच्छा लड़का इसको अब मिलना है, तभी तो अल्लाह ने इससे जान छुड़ाई है आपकी, आप क्यों गम करती हैं। और सेम यही बात लड़के के लिए, इसके बाद कोई गम की गुंजाइश रह जाती है? तो हमेशा याद रखिए दूसरों की बातों की परवाह नहीं करनी। मैंने कुछ लोग, चंद लोग तो मैं अपनी उंगलियों पे भी गिन सकती हूँ, आपके भी हर एक के होंगे, हम सबके होते हैं, जिनका सिर्फ ओनली मसला लोग और लोगों की बातें। कोई बात कह जाता है ब्लड प्रेशर हाई, किसी की बात सुन ली शुगर लो, किसी ने कुछ कह दिया बस दिमाग पे बोझ है। आप ऐसे बन के फिरें दुनिया में जैसे हवा है, बादलों की तरह उड़े, हवाओं की तरह उड़े, पता नहीं किसको कह रहे हैं मुझे नहीं पता। देखिए एक साथ रहकर आपके हालात कितने अच्छे हो जाते हैं, जिस जगह आज तक नहीं बनी इस असूल पे अमर कर लें इंशाल्लाह बन जाएगी। कुछ चीजें आप तोड़ ही नहीं सकते तो ठुकोरना क्यों है इसको, फिर वो ठुके हुए कप में जो चाय पीनी है तो उसको ना ठुकोड़े। बहुत सारे लोग रिश्ते तोड़ नहीं सकते, अब कौन छोड़ सकता है अब अपने 20-25 साल की शादी के बाद रिश्तों को ससुराल को, लेकिन वो हर वक्त ठोका ठाकी लगी रहती है। क्या फायदा इन ठोका ठाकियों का, या किसी के हो जाओ या किसी को अपना कर लो। और हमेशा एक बात जो आपको, मुझे लगता है कि मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको दूं, या आपका हक है, कि जब कोई बंदा आपसे बदगुई करे ना या आपके से बुरा करे, आप बोले मुझे तो इसने अब कहा, इससे पहले जब इसके दिमाग में ये चीज आई तो इसको कितनी तकलीफ हुई होगी। देखिए ये जो लोग हमें बुरा कहते हैं ना, गाली को देता है या गुस्से में आता है या शौहर है वो बोल पड़ता है या सास ताने देती है, ये तो लास्ट थिंग है। ये ऐसे जैसे प्रेशर कुकर की स्टीम उठा दी आपने, तो वो विसल उठाई तो स्टीम निकली ना, पहले उसके अपने अंदर कितनी आग लगी होगी। इसलिए ना किसी के लिए कड़े ना किसी की सुने, और हमेशा अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरे ऊपर ऐसी ना कोई बात आए कि मेरे से बर्दाश्त ही ना। और बर्दाश्त तब नहीं होती जब बंदा उसको अपनी बड़ाई के साथ सुनता है। तो बहरहाल आप देखेंगे सब साइकाट्रिस्ट भूखे मर जाएंगे, फ्लॉप हो जाएंगे उनके कारोबार, अगर आप सिर्फ इन चंद बातों पे जो अभी तक पढ़ी अमल कर लें। ये सारे साइकाट्रिस्टों से माजरत के साथ, ये तो हमारी इन्हीं की चीजों के तो पैसे खा रहे हैं, वरना उनको क्या। कुरान हदीस जो बातें बताते हैं हम उसके बारे में ज्यादा सोचते नहीं है। बहरहाल आगे चलिए, ऐसी बातों पर गौर करें जो इसके दीन और दुनिया में मुफीद हों। काम की बात करो, हम अक्सर उकत बेकार बातों पे, अच्छा अगर ये जोड़ा ना उसको दिया, उसको शादी पे तोहफा ना दिया वो क्या सोचेंगी, अच्छा ये दिया है फिर उसको पसंद ना आया तो क्या सोचेंगे, अच्छा वो वजन करके देखेंगे ये वजन बड़ा हल्का है, कड़े सास को हल्के डाल दिए वो क्या सोचेगी, दामाद को राठों की घड़ी ना डाली तो क्या सोचेगा, और ये ना कर दिया तो क्या सोचेगी, अच्छा ब्रांडेड कपड़े ना ले गए बहू के तो क्या सोचेगी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, ये बेकार बातें हैं। अच्छा गोरों ने ये कोई नहीं पाली नहीं, इसलिए खुश हैं, इसलिए वो गोरे हैं, आप पालिए आप भी गोरे हो जाएंगे, कुड़ कुड़ के जल जल के खून जलाते हैं हम अपना, कीन करें, कोई खुशी का मौका क्या है। मैंने अपने ये जो माजी करीब है ना इसमें कोई 4-6 वाक्य ऐसे अपने करीबियों में देखे हैं कि खुशी के मौके पे मैंने उनको ज्यादा दुखी देखा, वे दूसरों को खुश करते हुए आप भी गए, और बाद में मैंने देखा लोग बैठते हैं ना जो बहनें होती हैं वैसे, जैसे किसी का एक भाई होती है ना कुछ करीबी रिश्ते, तो कहते हैं हाय इतना इंतजार तो उस मौके का पता ही नहीं चला, खपाइयों में गुजर गया, खपाइयां ही लग जाती हैं। तो हमेशा मुफीद बातें, फायदा होगा इससे अल्हम्दुलिल्लाह, दीन को फायदा इट्स ओके, दुनिया का फायदा इट्स ओके, अगर दीन और दुनिया के फायदे से आप दूर हैं फिर आपको कोई हक नहीं है उस बात को एक सेकंड भी देने का, एक सेकंड देने का, वरना तो फिर आप और मैं ठेका ही ले लेंगे कि दुनिया में जहां को बुराई हम जाके इश्तेहार खड़ा करें, किसी जगह की बात है तो एक इश्तेहार तो उसमें कुछ इस तरह कुछ दर्स होंगे, मैं किसी को नहीं जानती, बहरहाल उसमें एक जुमला नीचे लिखा हुआ था जो नहीं होना चाहिए था और वो जिन्होंने पढ़ा सुना उनके लिए नया था, तो उन्होंने उस फ्लायर की कॉपी हमारे किसी एडमिन को किसी भी जगह के भेजी कि ये क्या हो रहा है इस फलां जगह का, तो ये पूछ के बताएं उस्ताजा से ये क्या है वो है। फिर मैंने उसको पढ़ा तो छोड़ दिया, मैंने कहा ठीक है जब वो बात पे पूछेंगी। फिर अगले दिन उनका मैसेज उस्ताजा से कहे कि क्लास में इस बारे में बात करें। अल्लाह के बंदो, एक मस्जिद का नाम नीचे लिखा हुआ है कितने बड़े, और दो पूरी लाइनें, मैंने खुद वो फ्लायर पर पूरी एक लाइन फ्लायर की मोटी मोटी, फिर दूसरी में सिर्फ उन बुजुर्गों का नाम लिखा था जो वहां विजिट करने आ रहे थे और जिनके साथ लोगों ने जिनसे फैज लेना था, पूरी 2 लाइनों में, और पूरी पहली लाइन में नाम नहीं था, दूसरी के शुरू नहीं आखिर खत्म होने से पहले उनका नाम था, और फिर उसका फुलां 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 सब के लाके, एक मस्जिद का नाम है, एक इदारे का नाम है, एक साहिब दीन का नाम है, वो आपके मुल्क में आ रहे हैं, इतने उनके हजारों मोतकदीन हैं, और मैं इस क्लास में आज आपको ये दमजरिया इलाज पढ़ाने के बजाय कहूँ जरा ठहरिए वो असलों में एक फितना आ रहा है, एक खबरदार ना जाइएगा, लोगों को रोक ले जैसे सैलाब आ गया या आग लग गई, मुझे सच बताइए क्या होगा, यहाँ से ये बात नहीं जाएगी, जाएंगे नूरुल कुरान वालों ने हमारे खिलाफ बातें की। मैंने उन्हें कहा कि रहमत है उसमें कि आपसे कोई नहीं पूछता, तो जब हमसे कोई पूछ नहीं रहा तो हम क्यों छेड़े इस किस्से को, और क्लास में तो एक एक मिनट कीमती होता है हमारे पास, आपने पूछा तो मैं आपको ये बता देती हूँ, उनको बता दें कि ये एक जुमला मुझे नहीं ठीक लग रहा, आपका दिल करता है आप जाएं, आपका दिल करता है ना आप जाएं, और ये काम ना करके जो इन्होंने लिखा हुआ, खत्म हो गई बात। अब जो है ही नहीं इशू, नॉन इशू उसको इशू बनाकर पहले क्लास में पेश करूं, बड़ी सी स्क्रीन पे खोल के फ्लायर दिखाऊं, फिर बताऊं, और जिसको नहीं पता हो सकता मेरे कहने पे वो उस काम के शौक में चली पड़े, गलत बात है। मिन हुस्न इस्लामी तरकुहु माला यानी, पढ़े हाँ जरा मेरे साथ, मिन हुस्न इस्लामी तरकुहु माला यानी, आदमी के इस्लाम का हुसन इस बात में कि बेकार चीजों को छोड़ दे, मुझे क्या लगे तुम्हें क्या तो मुझे क्या, तो लिहाजा अपना छोटा सा दिमाग जाया ना करें, इसमें भी और बहुत कुछ डाल दें तो अगर आपने सारी जहान का दर्द पाल लिया तो आप अपना काम भी नहीं कर सकेंगे। फिर उसके बाद 21वीं बात देखिएगा, किसी के साथ की हुई नेकी या एहसान का बदला सिर्फ अल्लाह ताला से मांगे, इसे ये मालूम होना चाहिए कि ये मामला अल्लाह ताला और इसका है, लिहाजा इस शख्स के शुक्रिया को अहमियत ना दे बल्कि ये कहे कि अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह दहर आयत 9 है, इन नमनुतिमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाम वला शुकूरा, हम तो तुम्हें सिर्फ अल्लाह ताला की रजामंदी के लिए खिलाते हैं, ना तुमसे बदला चाहते हैं ना शुक्रगुजारी, अहलो याल के फराइज की अदायगी में इसका लिहाज करना ज्यादा जरूरी है कि इनसे अपने एहसान का मुआवजा जहन में ना लाए। बात समझ गए, बस माओ को बस बीवियों को मैंने देखा है ताने देती हैं, तुम्हारे खाने पका पका के मैं थक गई, मेरे पांव सूज गए, मेरी टांगे थक गईं, मैं तुम्हारे लिए सुबह से शाम तक मशीन बन के काम करती रहती हूँ, और फिर बाद में इंसान क्या चाहता है कि लोग शुक्रिया के थैंक यू बोले, नहीं कोई कह दे खुश हो, उम्मीद ना रखें। कभी अपने बच्चों से ये उम्मीद ना कहें कि थैंक यू मामा खाना बड़ा मजे का था, नेवर एंड नेवर। और ये भी ना कह करे आज बच्चों की खुशी का खाना पका रही हूं। इन नमा नोती मुकुमली वछिल्ला, क्या चाहिए वछिल्ला, अल्लाह का चेहरा मिल गया और क्या चाहिए। और यकीन करे अगर अल्लाह आपसे राजी हो गया ना, तो बच्चों के दिल में खुद ही प्यार डाल देगा, शौहर के भी दिल में डाल देगा, घर वाले ससुराल। सारी जिंदगी औरतें ससुराल की खिदमत करती रहती हैं, बाद में कहती है मिलिया की, वो मिल गया था जिसकी वजह से आपने की इतनी खिदमत, अब और क्या लेना है आपने उनसे। ये तो खुशी नहीं होते। आपने ये जुमले अक्सर नहीं सुने, इनके तो मुंह ही नहीं सीधे होते, इनके तो मिजाज ही नहीं ठीक। ये बेगम साहिबा 12 बजे सो के उठ गई हैं, इनका नाश्ता भी मैं ही बनाती हूँ। है कोई तो खिला रही है ना, हैं बच्चे तो खिला रहे हैं ना, है शौहर तो खिला रहे हैं ना, है ससुराल तो आप इनकी खिदमत कर रहे हैं ना। आपके बच्चों के नानी दादा फूफो चचा मामू है, आपको ये रिश्तों की मिठास मिल रही है। क्या हम चाहते हैं कि हम जिंदगी में अकेले ही होते, बस मैं ही हूँ और कोई ना हो मेरी दुनिया में, नहीं। तो लिहाजा ये गिले शिकवे छोड़ दे, इंसान तो नफसियाती बीमारियां खुद ही खत्म। मुझे लगता है सिर्फ इस एक टॉपिक के बाद 90% हमारी मसले खत्म हो सकते हैं, सिर्फ इस एक मसले से। जी आप, नहीं तो थकने की इतनी जरूरत क्या जी, इनकी बात अच्छी सही है कि थकती हैं तो करती हैं ना, थकें। कौन कहता है आपको सलाद चटनी रोटी सालन लाओ बिरयानी पकाए। एक तो पहले मेहमान के लिए 6 खाने पकाती हैं, फिर बैठ के बातों के तीर देती हैं, कल से बैठी नहीं हो, और साथ फिर उसको इतने खाने भी पड़ते हैं, एक सालन रोटी बनाए। अच्छा मैं आपको इसकी एक टिप बताऊं, हम सभी औरतें ही हैं, थकते होंगे, सारे थकते हैं, कुछ ज्यादा काम करके थकते हैं, कुछ ना करके भी थकते हैं, वो कुछ थके ही रहते हैं, कुछ थकन की वजह से करते ही कोई नहीं। अब मसला क्या है, वो करे कुछ करके भी नहीं थकते। जहां थकने लगे घर में काम करें ना, टेक अ ब्रेक, शॉर्ट ब्रेक। मैं अपने ऊपर इसको बहुत हर दफा रोज आजमाती हूँ, जहां मुझे फील होगा ना कि मैं अब इस काम से फेड अप हूँ या मेरा मूड बिगड़ेगा, चाय का कप ले ले, कुछ भी ले ले, कुछ पकड़ी चीज, फोन है चलो मैसेज चेक कर लो, 45 मिनट घंटे का कोई काम करके ना, उसके बाद आप अपना कोई बीच में छोटा सा ब्रेक लें, चले ईमेल चेक कर लो, अच्छा चले, यानी जिसमें खड़ा नहीं होना बैठना है, ये शर्त है, खड़े हुए के थक गए ना तो बैठ जाइए। अगर बैठ बैठ के कोई काम कर रहे थे तब थोड़ी देर उठिए तो कोई वॉक करने वाला काम कर लें, कोई चीजें उठा लें घर में, यानी अपना मूड खुद सेट करें। हम दूसरों से सेट करवाते हैं, फिर उनकी बात सुन के हमारा मूड और खराब हो जाता है, ठीक है। तो लिहाजा आप बस अल्लाह पे राजी रहें। नेक्स्ट, मुफीद कामों को अपना नस्बुल ऐन बनाएं और इनके हसूल की कोशिश करें, और नुकसानदेह कामों से परहेज करें और इनकी तरफ बिल्कुल तवज्जो ना दें। कुछ ने कहना है लो पहली इन्ने काम सी होर दे रहे हैं, कौन सोच रहा है ये बात। अब जी हम नस्बुल ऐन बनाएं, वो क्या होता है, वो कहाँ से मिलता है, फिर हसूल की कोशिश करें, फिर नुकसानदेह कामों की लिस्ट बनाएं, तवज्जो दें। इस वक्त भी मैं आपको यकीन से कह सकती हूँ, आप अगर इस क्लासरूम में नहीं बैठ के ये सुन रहे होते ना, तो मेरी ये बातें आपके कानों में थी। मैं दावे से कह सकती हूँ, बुलाएं कैंटीन वालों को और बुलाएं बच्चों वालों को, और उन्हें कि अभी क्या कहे, आप समझे बात को। ये वो चीज है जिसकी वजह से फिर हम बदमिजाज भी होने लगते हैं। बस माए इतने खाने पका के रखेंगी ना, तो बाद में एक इतनी कड़वी बात कर देंगी ना, तो बच्चे कहेंगे मामा आप ऐसे क्यों करती हैं। यकीन करें वो पुलाव बिरयानी पिज्जा खाना जो आपने बनाया था ना, उसका टेस्ट खत्म हो जाता है आपकी चिड़चिड़ाहट से। गिव अप कर दें, हर बंदे की एक ताकत होती है, सच्ची बात है, किसी में बीमारी है किसी में से, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकती, बस मूड अच्छा रखें, बाहर से मंगा लें खाना, बच्चे भी खुश आप भी खुश, क्या होगा, एक नई माँ ला दें और ही खुश, मियाँ भी खुश। ये नहीं कर दे कि सर कितने बड़े बड़े हिल रहे हैं, कई मियाँ कहते हैं कि भाई फिर हम तुम्हारे हेल्पर ले आते हैं, तो हेल्प फिर ज्यादा ही कर देगी, है ना। यानी आप सोचें कि खुश रहे, बस जिंदगी का एक खुलासा है कि मुझे खुश रहना है, फिर आप देखेंगे कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां करेगा। तो मुफीद काम, जिंदगी से नुकसानदेह कामों को निकाल दें, बेकारियात को निकाल दें, अपने पूरे घर का जायजा लें। यकीन करें मैं आपको सच कह सकती हूँ, हम ज्यादा खिदमत बेजान चीजों की कर रहे होते हैं। जो हमारी खादिमा थी ना, हम उनके खादिम बन गए, कपड़े हमारे खादिम है ना, ये कपड़ा सूट जो हमने कपड़े पहने, ये हमारी खिदमत कर रहे हैं ना, गर्मी से बचा रहे, हमारे ये ऐप छुपा रहे हैं, तो ये हमारे खादिम है, हम इनकी खिदमत में लग गए, धो रहे हैं समेट रहे हैं इस्त्रियां कर रहे हैं माया लगा रहे हैं कलप लगा रहे हैं, इधर संभाल उधर संभाल, अभी करके नहीं बैठे तो अभी घर साफ किया, अभी इस मशीन खाली की, माशाल्लाह, एक एक जोड़ा सबने उतारा, फिर मशीन भर गई। सिखा दें अगलों को, बस खुश रहें। कुछ लोग कर भी ले तो उनको कुछ नहीं होता, लेकिन ये कि जहां आपको फील हो ना कि ये किसी पर किया हुआ एहसान मुझे बदमिजाज बना देगा, स्टॉप, उससे पहले हो जाए। लोग इससे ज्यादा बुरा नहीं मानेंगे कि आपने उनका काम नहीं किया, लेकिन काम करके अगर आपने उनसे बदमिजाजी बरती, इससे दुखी होंगे। वो कहते हैं ना, हलवा पका के ऊपर राख डाल देना, तो ये ना करें, ठीक है। फिर नेक्स्ट कहे कि मुस्तकबिल की बजाय मौजूदा कामों पर तवज्जो दे, या मुस्तकबिल के कामों के लिए सोचने और काम का वक्त आए तो इन्हें सोच समझ कर अंजाम दे। हमारा हाल क्या, शादी में क्या खिलाएंगे, किसका खाना अच्छा है, किधर बात करें, फोन करें, इसमें आधा घंटा घंटा 2 घंटे लगे, पता चला आज रात का खाना भी नहीं पकाया हुआ। समझे बात को, मुस्तकबिल करीब की फिक्र करें। लेट इट, आज का गुजर गया वक्त, खुदा हाफिज, लाइटें बंद, देखेंगे कल क्या होगा। बहुत लंबे लंबे प्लान बना के उसका मसला डालते हुए छोटा नहीं। बस आप कहते हैं हाय बच्चा, अच्छा अब ये बड़ा होगा, फिर इसको जॉब नहीं मिलेगी, फिर ये पढ़ नहीं रहा, फिर ये होगा, फिर इसकी शादी कहाँ करूँगी, फिर वो मैं क्या करता हूँ, ये है वो है, और फिर पता नहीं ये पढ़ने चला जाएगा बाहर, फिर ये मुझे छोड़ जाएगा। इतने में बच्चा कहता है मामा मुझे खाना तो दे दो। 4 साल का बच्चा और आप उसके रिश्तों तक पहुंच गए, तो ये दुरुस्त तरीक नहीं है। आज का गम आज ना बेटे, अल्लाह ने रात भी इसलिए रखी है। 2-3 दिन पहले मुझे ऐसे फील हो रहा था, यदि मैं ऐसे सोच रही थी, मुझे अल्लाह भी इतना प्यार आया कि ऐसे नहीं होता रात को हम सब मर्दों की तरह पड़ जाते हैं। कभी सोचे ना, अगर कोई बंदा पहली दफा दुनिया में ये मंजर देखे, सारे चल रहे थे, भाग रहे थे, फिर रहे थे, अब सारे मुर्दे होके लेट गए। अल्लाह ने ये बीच में जो पॉज दी है ना, उसकी भी हिकमत है। एक नया सुबह, एवरी डे इज अ न्यू चांस, और हर दिन सुबह इसलिए होती है कि मुझे अपनी इसलाह का एक नया चांस मिले। आई शुड चेंज माई बिहेवियर, आई शुड चेंज माई थॉट्स, मुझे अपनी सोचों को बदलना है, मुझे अपने रवैये बदलने हैं, मुझे कुछ करना है। और आप देखिए, 1 साल पहले अगर आपकी ये आदत थी, आज भी यही है ना, तो आपने 1 साल की सारी ट्रेनिंग ज़ाया कर दी है, तो खुश नहीं रहेंगे। और मैं आपको सच बताऊं कि छोटी छोटी अचीवमेंट्स मुराद है, चीज़ें जो हमें कामयाबियाँ मिलती हैं, ये हमें हमारे ऊपर एतमाद देती हैं। कल मैं देर से आती थी, अब मैं 5 मिनट पहले आई हूँ आज, ये मेरी अचीवमेंट है। कल देखिएगा मैं 2-3 मिनट और भी पहले आऊंगी। कल जो मुझे काम दिया गया था मैंने आसन दर्जे पे किया, मुझे एनर्जी मिली, आज मैं अब जरा उससे भी बड़ा काम करूंगी। और अगर सेम डगर पे ही चल रहे हैं हम, जैसे थे वहीं के वहीं हैं, तो फिर हम अपने से भी खुश नहीं होते, फिर आखिर हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। मेरे से तो कभी हुआ ही नहीं, मुझे तो अकल ही नहीं है, मैं तो पागल हूँ, कभी भी ना ये बोले। तो अपने आप को हमेशा पॉजिटिव नजर से देखें, दुश्मनों की नजर से नहीं देखें, अपने आप को दोस्तों की नजर से देखें। इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। इतना ही मुझे लगता है काफी है, इसको भी बर्दाश्त कर लें और हजम कर लें तो बहुत। अल्लाह ताला हमें हक अदा करने की तौफीक दे। काफी इतना। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।